Шилэнж. Шилэнж. एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम क्षितिज में समस्त मॉरिशस निवासी तथा विश्व के कोने कोने में सेवारत हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य एवं भारतीय संस्कृति से जुड़े विद्वानगण तथा सहृदय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर संयुक्ता का दिव्य अभिवादन स्वीकार हो। क्षितिज श्रृंखला में आज चर्चा का विषय है हिंदी नाटक की गरिमा तथा नवीन आयाम, और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं श्री बलवंत ठाकुर जी, जो भारत भूमि के सृजनात्मक नाट्य कला निदेशक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। आजकल आप मॉरिशस स्थित इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक हैं। श्री बलवंत ठाकुर भारत भूमि के सृजनात्मक नाट्य निदेशक के रूप में सुप्रसिद्ध हैं। आपकी विशेषता यह है कि आपने नाट्य कला को नवीन आयाम प्रदान किया है। नाटक को सहृदय रसिकों तक पहुंचाने तथा नाटकों को प्रभावी रूप से प्रस्तुत कर जनमानस के जीवन में परिवर्तन लाने की अभूतपूर्व सेवा संपन्न की है और अभी भी सेवारत है। श्री बलवंत ठाकुर को नाट्य कला का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्राप्त हुआ है। मार्के की बात है कि आप भारत के ऐसे सक्रिय युवा नाटककार हैं जिन्होंने 300 से अधिक नाटक उत्सवों में भाग लिया है तथा 6000 से अधिक नाटक संबंधी कार्यक्रमों में सक्रियता दर्शाई है। साथ ही अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा आपको रंगमंच में नई भाषा की खोज सफल परियोजना के लिए भी पुरस्कृत किया गया है। नाटक और रंगमंच में आपके अथक पुरुषार्थ हेतु अभिनायक सम्मान, कलानिधि पुरस्कार, टैगोर सम्मान, पृथ्वीराज कपूर सम्मान आदि से आप विभूषित हैं, और सन 2013 में नाटककार, कवि, निदेशक तथा सफल प्रशासक के रूप में अनुपम योगदान के लिए आप को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार क्षितिज के प्रिय श्रोताओं, आज हमारे साथ नाटक कला के ऐसे संपन्न प्रतिभावान महारथी उपस्थित हैं जो अपने अनुभवों पर आधारित नाटक की गरिमा तथा नाट्य कला संबंधी नवीन आयामों पर विचार विमर्श करेंगे। तो सर्वप्रथम हम MBC के स्टूडियो में आदरणीय बलवंत ठाकुर जी, आपका स्वागत करते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया।
और संक्षेप रूप में हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी नाट्य यात्रा कैसी रही।
सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपने क्षितिज जो आपका कार्यक्रम है उसमें भाग लेने का मौका दिया। मैं आपको बता दूं, नाटक का मेरा संबंध तीन तरीके से है। एक तो मैं नाटककार हूं, नाटक लिखता हूं, दूसरा नाटक निर्देशक हूं, और सिर्फ अपने ही लिखे हुए नाटक नहीं, मैं और नाटककारों के नाटक भी मैंने निर्देशित किए हैं, और तीसरा मैं अभिनय, हालांकि अब मैं कम करता हूँ, बट मेरी नाटक की यात्रा है वो अभिनय से शुरू की मैंने, और उसके साथ साथ मैंने निर्देशन शुरू किया, और निर्देशन के साथ साथ फिर मैं नाटक लिखना भी शुरू किया। वो कहते हैं कि ज़रूरत जो है वो खोज की जननी है। जब आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, जब कला के क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपको लगता है कि नहीं नहीं, ये और पूरा करने के लिए अपनी तरह का नाटक, अपनी तरह का प्रदर्शन, अपनी तरह की चीज़ें करने के। जब मैं अभिनय करता था तो मुझे लगा कि नहीं, जो मैं अपनी तरह का नाटक बनाना चाहता हूँ, मुझे नाटक को निर्देशित खुद करना होगा, तभी मैं उस तरह का नाटक कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ, जिस तरह का मेरे से अभिनय निकल पाए। जब मैं अभिनय और निर्देशन दोनों चीज़ें एक साथ करने लगा तो जो नाटक मुझे मिलते थे, क्योंकि नाटक तो आपको पता है प्रकाशित नाटक तो उपलब्ध हैं भारत में, हर जगह मिल जाते हैं, तो ये कुछ साल खेलने के बाद ये लगा कि जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, मुझे खुद लिखना पड़ेगा। मैं खुद कवि भी हूँ और कविता तो बहुत पहले से करते थे, तो कविताओं के माध्यम से कहानी भी लिखते थे। नाटक कला एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाओं का समावेश है, आप में विजुअल आर्ट से लेकर के परफॉर्मिंग आर्ट्स में संगीत, नृत्य, नाटक और साहित्य भी है इसमें, आप कवि और कहानीकार और उस रूप में भी एक, मतलब रंगमंच एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं, जब सारी कलाओं का मिलाते हैं तो रंगमंच की कला बनती है। तो ये एक बहुत अच्छा मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था जिसके माध्यम से मैंने अपने अंदर जो मेरी थोड़ी बहुत चीज़ें जो एक्सप्लोर हो सकती थी, जिनको मैं और अच्छा एक नया आयाम दे सकता था, वो देने के लिए मुझे इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मैं बचपन से ही मेरी बहुत इच्छा थी, मैं एक स्टोरी टेलर के रूप में रहता था, कहानियाँ बनानी भी, कहीं बनी बनाई सुनानी भी, और ये कहानी कहने की आदत थी, जहाँ चंद लोग मिलें परिवार में, परिवार के बाहर स्कूल में, बस एक झुंड मिलना चाहिए तो सब मेरी तरफ होते थे, यार कुछ सुनाओ, तो कुछ सुनाने की लालसा में नई नई चीज़ें खोजते रहना, नए नए ज्ञान को प्राप्त करते रहना ताकि उसको हम डिसेमिनेट कर पाएँ, सबके बीच में ला पाएँ। तो ये मुझे लगता है कि सारी कलाएं जितनी भी दुनिया में हैं, एक कलाकार के रूप में आपके अंदर हमेशा एक जिज्ञासा रहती है कि आप लोगों से जुड़ें और अपनी बात को कहें। कोई जो है वो पेंटिंग्स के माध्यम से कहता है, कोई पोइट्री के माध्यम से कहता है, कोई कहानी के माध्यम से कहता है। मैंने सारे माध्यम थोड़े 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 करके जो है वो अपने आप में अपनाए और उनका प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन जब मुझे रंगमंच का माध्यम मिला तो तब लगा कि साहब यही तो है कि सब एक ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ो जिसमें सारी चीज़ें समावेश हो जाए। तो इस तरह से मेरी यात्रा बहुत मतलब बचपन से शुरू हो गई, मैं स्कूल में पढ़ता था तभी से नाटक हिस्सा जुड़ा हूँ, और फिर चलते 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 कॉलेज, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बियॉन्ड पढ़ाई के साथ साथ, और एक समय ऐसा आ गया पढ़ाई पीछे रह गई और नाटक ने और इन चीज़ों ने इतना ज़्यादा जकड़ लिया, इतना ज़्यादा इंगेज कर लिया कि मेरे पास वो 24/7 क्या कहते हैं कि सोना, ओढ़ना, बिछोना, खाना, सोचना, जो भी है वो सिर्फ नाटक था। तो ये ऐसे ही है, एक लंबा समय रहा है, 40 साल हो गए हैं आज नाटक के क्षेत्र में आए हुए, और भारत में ही नहीं, भारत के बाहर बहुत सारे देशों में, मैं 2012 में मैंने 100 मुल्क पूरे किए थे। तो अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन मैं बहुत कम भारतीय ऐसे हैं जो विदेश में अपने नाटकों को प्रस्तुत कर चुके हैं, जो कर रहे हैं उनमें मैं एक हूँ। मेरे नाटकों का एक अच्छा डिमांड रहता है विदेश में, और मैं विदेश में काफ़ी ट्रैवल किया है, विदेश में जाके काम भी किया है, कार्यशालाएँ भी की हैं, नाटकों की प्रस्तुति भी तैयार की है, और अपने नाटक लेकर के भी बहुत देशों में जाने का मौका मिला।
सृजनात्मकता कहते हैं कि ईश्वर प्रदत्त है। नाटक संबंधी बहुमूल्य योगदान के लिए आपको भारतीय सरकार द्वारा नेशनल सीनियर फेलोशिप प्रदान किया गया था, जिसके अंतर्गत आपने 3 वर्षों तक जम्मू और कश्मीर में नाटक संबंधी शोध तथा अन्य गतिविधियां भी संपन्न की, जैसे लगभग आपने 500 गांवों में वहां जाकर आपने सेवा प्रदान की, आपने नाटक प्रस्तुत किए, जिसके चलते आपको संस्कृति अवार्ड से नवाजा गया। तो कृपया जम्मू और कश्मीर में आपके अनुभवों को साझा करें।
पहला मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर प्रदेश जो है भारत का, उसकी अपना एक विशेषता है, उसकी लोगों को दूर से कश्मीर लगता है, जम्मू लगता है, लेकिन बात यह है कि ये एक विभिन्न भाषाओं का, विभिन्न कलाओं का, विभिन्न संस्कृतियों का जब समावेश होता है तब जम्मू कश्मीर होता है, अपने आप में एक पूरा देश है। वहाँ पे कश्मीरी, डोगरी, पहाड़ी, गोजरी, भद्रवाही, लद्दाखी, बालती, किश्तवाड़ी, कितनी सी सारी भाषाएं हैं। सबसे विशेष बात यह है कि एक भाषा दूसरी भाषा से मिलती नहीं है, एक भाषा वाला दूसरी भाषा से आप में आपस में बात नहीं कर सकते हैं। और ये एक विशेषता है कि गुलदस्ता है जिसमें विभिन्न रंग हैं, और कला का एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आपको मालूम है कि पहाड़ी संगीत जो है ये पूरी दुनिया में आया, उसका उपज जो है वो जम्मू की पहाड़ों से हुआ है, जो मुँह से निकला हुआ है। जो बड़े बड़े संगीतकार हमारे देश में हुए हैं, कुंदन लाल सहगल से लेकर के पंडित शिव कुमार शर्मा, अल्लाह रखा, जाकिर हुसैन, ये सब लोग जम्मू की धरती से निकले हैं। संगीत का बड़ा था, एक बहुत बड़ा चलन था। तो ऐसे में जब मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में काम करता था तो मुझे लगा कि चूँकि एक थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड जोन है, वो क्षेत्र ऐसा रहा है, तो मुझे ये लगा एक कलाकार के नाते कि कला की भूमिका सर्वोपरि हो सकती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सबसे अधिक हो सकती है। तो मुझे संस्कृति की कला की एक भूमिका को तलाश करना होगा, तो उस खोज में मैं निकल गया और बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं उस प्रदेश के, उनको मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं थिएटर द्वारा, नाटक द्वारा। मेरा जो उद्देश्य ये था कि हम लोग चूँकि एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में, यहाँ पे थोड़ा लोगों का ध्यान जो है किसी और चीज़ की तरफ, क्योंकि इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो एक इंटेलेक्चुअल इंगेजमेंट की जब हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की, युवाओं की और बाकी आम जनता की भी, उसको लेकर के बहुत काम किया मैंने, और बहुत सारे बच्चों के नाटक, बड़ों के नाटक, युवाओं के लिए नाटक, और यूँ कहिए कि नाटकों के माध्यम से मैंने एक लार्जर पॉपुलेशन को इंगेज कर दिया। जगह जगह गांव-गांव जाकर के नाटक का दर्शाना, और एक एक नाटक को देखने के लिए 10-10, 15-15 हज़ार लोगों का आना, एक नाटक अपने आप में एक आंदोलन का रूप उस प्रदेश में कर गया। मैं अभी ज़्यादा दावा नहीं करना चाहता कि, लेकिन जिसको हम लोग पीस बोलते हैं, पीस इनिशिएटिव में थिएटर ने एक बहुत बड़ा रोल जो निभाया है, उसकी बुनियाद मैंने रखी वहाँ पे। और गांव-गांव जाकर के, जगह जगह जाकर के, स्थान स्थान जाकर के हमने नाटक जो हैं वो पहुँचवाए। और नाटक लोग समझते हैं कि नाटक एक खाली जो है मनोरंजन का माध्यम है, लेकिन मेरे काम का जो अप्रोच लोगों ने देखा और जिस तरीका से उसका एक ग्राउंड पे जो इफ़ेक्ट लोगों ने देखा, तो लोगों ने समझा कि नाटक का रोल बहुत बड़ा है। वो एक खाली मनोरंजन नहीं है, बल्कि समाज को एक नई दिशा देने में नाटक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है।
और साथ ही 1983 में भारतीय संस्कृति के उन्नयन हेतु आपने नटरंग नामक संस्था की स्थापना की, इस संस्था के योगदान के बारे में
देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि हम लोग किसी न किसी सरकारी अदारे के माध्यम से काम करते हैं, कोई ना कोई सरकारी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आपके सपोर्ट में आती है, तो जब किसी आप स्ट्रक्चर में काम करने लगते हैं तो वहाँ अपनी तरह का उसके नियम है, उसका पालन आपने करना पड़ता है, उनके उद्देश्य कुछ और हो सकते हैं। मेरा एक संस्कृति कर्मी होने के नाते, नाटककार होने के नाते, निर्देशक होने के नाते, मुझे यूँ लगा कि जो एक रचनात्मकता है, जो क्रिएटिविटी है, उसको लिबर्टी चाहिए। उस और लिबर्टी के लिए तभी हो सकता है जब आप अपनी तरह का, अपनी सोच का, अपने विजन को लेकर के एक संस्था की बुनियाद डालें। तो मैंने सरकारी अदारों से अपने आप को दूर रखने के लिए और अपनी तरह से कला को चलाने के लिए मैंने एक नाट्य संस्था की बुनियाद रखी, जिसका नाम नटरंग है। नटरंग इस समय मुझे, मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारत के उन कम संस्थाओं में हैं जिसका पूरा देश भर में काम है, और इसमें 150 से ज़्यादा लोग इसमें काम करते हैं, जो लेखक हैं, कलाकार हैं, निर्देशक हैं, और रेगुलर रेपर्टरी है इसकी, अपना स्टूडियो थिएटर है, और देश भर में जा जा कर के नाटक होते रहते हैं। इसके अपने कुछ कार्यक्रम हैं, बच्चों के लिए अलग हैं, युवाओं के लिए अलग हैं, गांव-गांव में जाकर के करने वाले जो हमारी टीम है वो अलग है। तो इस तरह से एक मूवमेंट जो है संस्कृति की, एक जो आप क्या कह सकें कल्चरल मूवमेंट को हमने एक वहाँ पे एक स्थापित किया है, और अभी ये ऑलमोस्ट 40th ईयर चल रहा है इस समय, और 2023 में हम लोग 40 साल इस संस्था के पूरे करने वाले हैं। तो अब मुझे नहीं लगता, हमारे यहाँ क्या होता है कि इस तरह के जो जितने भी इनिशिएटिव्स हैं वो थोड़ा बढ़ते हैं, एक दो साल में दम तोड़ देते हैं, लेकिन एक संस्था का 40 साल तक जिंदा रहना और एक निरंतर प्रगतिशील होना और लगातार काम करना, अपने आप में ये दर्शाता है कि उसमें किस तरह के लोग जुड़े होंगे और किस तरह का काम करने का तरीका रहा होगा।
श्री बलवंत ठाकुर जी, आप रचनाकार, साहित्यकार, नाटककार, रंगकर्मी के रूप में भी प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक विशेषता है आपकी कि प्रशासन में भी आपकी इतनी दक्षता देखते हैं, इसका राज क्या है?
कभी सोचा नहीं कि मुझे प्रशासन में आना है, कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं प्रशासक के रूप में काम करूंगा, मगर क्या कहते हैं, अगेन नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, मतलब ज़रूरत महसूस हुई। जब एक बहुत बड़ा संस्थान चलाते हैं, संस्था चलाते हैं, तो संस्था खाली क्रिएटिविटी से नहीं चलेगी, उस तरह की रचनात्मक सोच से नहीं चलेगी, आपके अंदर दूसरी क्षमताएँ भी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंस मैनेजमेंट आना चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आना चाहिए। तो ये सब करने के लिए मुझे ये सारी चीज़ें, सारी सलाहियतें जो हैं अपने में लानी पड़ी, सारी चीज़ें सीखनी पड़ी, और उसके सीखने के चलते चलते जब सरकार को ये लगा कि ये व्यक्ति एक एनजीओ को बहुत बड़े और भारत कोई छोटा देश नहीं है, इसका वॉल्यूम देखिए, इसका मैग्नीट्यूड देखिए, 1995 में मुझे जम्मू कश्मीर सरकार ने सचिव के रूप नियुक्त किया। मैं सेक्रेटरी रहा आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस लिटरेचर आर्ट्स एजुकेशन का जम्मू कश्मीर में, और एक लगभग 8 साल से अधिक के समय तक मैं रहा। और उसके बाद एक प्रशासक के रूप में मैं एक रेयर कॉम्बिनेशन हूँ क्रिएटिविटी और एडमिनिस्ट्रेशन का, ये देखते हुए मैं उसके बाद फिर रीजनल डायरेक्टर बना इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस का, वहाँ मैं 6 साल काम किया। उसके बाद मैं 3 साल अभी साउथ अफ्रीका में स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर का डायरेक्टर रहा, और अब मैं यहाँ हूँ लगभग पिछले 2 साल में मॉरिशियस में इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र का निर्देशक हूँ। और ये ठीक है, अब ये मैं कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन और क्रिएटिविटी दोनों का जो है एक वो संतुलन बना रहे, तभी मुझे लगता है चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद श्री बलवंत ठाकुर जी, आपके इन उत्तम विचारों के लिए, नाट्य कला संबंधी आपके विचार मंथन के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। तो प्रिय श्रोताओं, आपके ध्यान के लिए भी धन्यवाद। एक दूसरा क्षितिज का कार्यक्रम लेकर आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।
क्षितिज क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।